दिन भर 23 मार्च दिन शुक्रवार सभी श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर अटका मामला, बसपा और भाजपा में मुकाबला।
जब जिनके पास विधायक है ही नहीं वह लोग अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं? हमारे पास तो सरप्लस विधायक हैं, इसलिए हमने नौवा प्रत्याशी घोषित किया, लोकतंत्र है।
आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी राहत, 20 विधायकों की सदस्यता बहाल। और विवेचना में आज बात भारतीय क्रिकेट के शुरुआती ग्लैमर बॉयज में से एक फारूख इंजीनियर की।
सही ओवर के बाद सोवर एकदम गर्म होगा क्योंकि तुम लोग क्या करते हो आउट करने के लिए, रन देते हो इतने, तो बोलते हम क्या करें, वो मारता है बैट्समैन तो खुद आया बॉलिंग करने के लिए और खुद को 25 रन मारे एक ओवर में।
ये सब कुछ होगा लेकिन विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान एक बसपा विधायक अनिल सिंह ने क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की पुकार पर वोट दिया है, चुनाव परिणाम जल्द आने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस से रिपोर्टें आ रही हैं कि ट्रैब की सुपरमार्केट में एक बंदूकधारी ने खुलेआम गोलीबारी की जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा बंदूकधारी को मार गिराने की रिपोर्टें भी आ रही हैं। घटनास्थल पर फ्रांस के विशेष सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बंधक बनाने वाले शख्स ने इस्लामिक स्टेट समूह के प्रति अपने झुकाव का दावा किया है। कथित तौर पर उसने 2015 के पेरिस हमले के आरोपी सलाह अब्दुस्सलाम की रिहाई की मांग की थी। इससे पहले कारकासोन में चहलकदमी के लिए निकले पुलिसकर्मियों के एक समूह पर अगवाकर्ता ने गोलीबारी की थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने पत्रकारों से कहा है कि स्थिति गंभीर है। घटनास्थल पर तेजी से सुरक्षा बलों को पहुंचाया गया है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। जितनी भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर हमें लगता है कि यह आतंकी गतिविधि हो सकती है। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के शब्द। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जॉन बोल्टन को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसराइली सरकार के कई सदस्यों ने इस फैसले का स्वागत किया है। न्याय मंत्री आयलेट शॉकेट ने बोल्टन को इसराइल का सच्चा दोस्त बताया है। वहीं वरिष्ठ फलस्तीनी नेता हनान अशरावी ने कहा है कि बोल्टन को ट्रंप प्रशासन द्वारा नियुक्त करना अतिवादी यहूदियों, कट्टरपंथी ईसाइयों और गोरे रंगभेदी ताकतों में शामिल होने जैसा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि वो विद्रोह करने के आरोप में कैटलोनिया के 13 अलगाववादी नेताओं पर मामला चला रहे हैं। इन नेताओं में आत्मनिर्वासन में रह रहे कैटलोनिया सरकार के पूर्व प्रमुख कार्लस पुग्जेमोंट, पूर्व उप प्रमुख उरियोल जूनकेरस और क्षेत्र के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए जॉर्डी टुरुलिया भी शामिल हैं। गुरुवार रात को कैटलोनिया संसद में हुए मतदान में टुरुलिया पद पर चुने नहीं जा सके थे। इन सभी पर क्षेत्र की आज़ादी को बढ़ावा देने में शामिल होने का आरोप है। रूस ने कहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका के उकसावे के बाद यूरोपीय संघ रूस विरोधी अभियान में खींचा जा रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा मॉस्को से अपने दूतावास को वापस बुलाने के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लंदन और वॉशिंगटन यूरोप में स्थिति के सुधार को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान बाकी के यूरोपीय संघ के राष्ट्र भी रूसी राजनयिकों को बर्खास्त करने पर विचार कर रहे हैं। ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में ब्रिटेन द्वारा पूर्व जासूस पर हमले को रूसी कोशिश बताने पर सबके बीच सहमति बनी है। लंदन और उनके सहयोगियों द्वारा शुरू किए गए रूस विरोधी अभियान में यूरोपीय संघ का फैसला खेदजनक है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे यूरोपीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए बाधा उत्पन्न करना है। ये थे रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आर्तियोम कोजिन के शब्द। सीरिया के एक निगरानी समूह ने कहा है कि दमिश्क के नज़दीक पूर्वी गूटा में रूस के हवाई हमले में तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन स्थित सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि पूर्वी गूटा के अरबिन इलाके के तहखाने में कई लोग मारे गए हैं। समूह के एक प्रवक्ता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में संघर्ष विराम के लिए कहा था जिसे गुरुवार से लागू किया जाना था। हालांकि पूर्वी गूटा में बमबारी को लेकर रूस ने साफ इनकार किया है। इस्लामी समूह बोको हरम की कैद से बुधवार को छूटकर आई 106 लड़कियों और एक लड़के से नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने मुलाकात की है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की दूसरी सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं और मतों की गिनती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 1 उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 10वीं सीट के लिए भाजपा और बसपा में टक्कर दिख रही है। आज मतदान शुरू होने के साथ ही इस 10वीं सीट के लिए मतों पर कयास लगते रहे। पूरे घटनाक्रम पर सुनिए समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
विधानसभा भवन के गलियारे आज सुबह से ही किसी रंगमंच का आभास दे रहे थे। शुरुआती चर्चा में कुछ निर्दलीय विधायक, पाला बदलने की कोशिश में बीजेपी के सहयोगी दलों के कुछ विधायक और कुछ अन्य थे। फिर उन्नाव से बीएसपी विधायक अनिल सिंह क्रॉस वोटिंग करके अचानक सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए।
मैं महाराज जी के साथ हूं। दूसरा, मैंने वोट डालकर लालजी वर्मा जी को दिखा दिया है।
बाकी आप लोग खुद समझदार।
और मतदान खत्म होते होते चर्चा का केंद्र बिंदु कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया पर आकर सिमट गया। राजा भैया मतदान से एक दिन पहले सपा नेता अखिलेश यादव के साथ बैठे थे और मतदान करने के तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की। राजा भैया ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया।
इसे तो हमेशा मुलाकात होती रहती है और हर विधायक मिलता है,
वोट भी गया,
और सबके लिए सुलभ भी है। वोट के विषय में मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई।
दरअसल 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 11 उम्मीदवार होने के कारण ये चुनाव इतना दिलचस्प बन गया। बीएसपी ने सपा, कांग्रेस और रालोद के विधायकों के अलावा कुछ एक निर्दलीय विधायकों के वोट की उम्मीद में संख्या बल कम होने के बावजूद भीमराव अंबेडकर को अपना उम्मीदवार बना दिया, तो बीजेपी ने भी अपने बचे हुए वोटों के सदुपयोग की उम्मीद में एक अतिरिक्त प्रत्याशी उतार दिया। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
जब जिनके पास विधायक है ही नहीं वह लोग अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं खड़ा कर सकते। हमारे पास तो सरप्लस विधायक हैं, इसलिए हमने नौवा प्रत्याशी घोषित किया, लोकतंत्र है।
2 दिन पहले से ही इसी 10वीं सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक ओर सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद लगे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के मत दिलाने में लगी थी। वोटों के लिए गुणागणित अंतिम समय तक होती रही। सपा नेता सुनील साजन का कहना था कि गणित के इस इम्तिहान में उनकी पार्टी ही पास होगी।
गणित केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती, गणित हम लोगों को भी आती है। चुनाव में गणित चलती है और ये चुनाव ही गणित का है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी गणित में पास होगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गोरखपुर और फूलपुर की तरह उनकी गणित फेल होगी।
बीएसपी विधायक की क्रॉस वोटिंग से बीएसपी को तो सदमा लगा ही, लेकिन सदमा बीजेपी को भी लगा जब खबरें आईं कि सुहेल देव समाज पार्टी के एक विधायक ने बीएसपी के पक्ष में वोट दे दिया है। बहरहाल जीत के दावे दोनों ओर से हो रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि यदि प्रथम वरीयता के आधार पर जीत हार तय नहीं होती तो दूसरी वरीयता के आधार पर फैसला होगा, और उस स्थिति में सबसे ज्यादा विधायक होने के नाते बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा भारी पड़ेगा। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बसपा और सपा की शिकायत के बाद राज्यसभा चुनावों के वोटों की गिनती रोक दी गई थी। अभी थोड़ी देर पहले समीरात्मज मिश्र ने यह जानकारी दी है कि वोटों की गिनती फिर शुरू हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। लाभ का पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने इन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आज चुनाव आयोग से कहा कि वो दोबारा इन विधायकों के मामले पर सुनवाई करे। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया है। दिल्ली से ही अभिजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए था। हाई कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने कहा कि इस फैसले के बाद सभी विधायक अपने पदों पर बने हुए हैं, लेकिन लाभ के पद के आरोपों की जाँच होगी।
कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगी है वो वैलिड है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, बस इस पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इनको प्रॉपरली सुना नहीं, ये कोर्ट का मानना था। लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके ऊपर इंक्वायरी जरूर होगी और उसके ऊपर फैसला दोबारा आएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया। वहीं आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा और कांग्रेस को एक साथ कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि चुनाव आयोग ने विधायकों को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया था।
जिसके ऊपर आरोप हो उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात कहे। इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 विधायकों को मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी बात कह सके।
पर आम आदमी पार्टी से बगावत कर चुके दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने इस फैसले को आम आदमी पार्टी की नैतिक हार बताया है।
हाईकोर्ट ये कहता है कि चुनाव आयोग बस इनको एक बार सुन ले, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दे। रिकमेंडेशन को गलत नहीं बोला हाईकोर्ट ने, तो मेरे को लगता है नैतिक तौर पर एक बड़ी पराजय है ये।
उधर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आपके विधायकों को इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है।
टेम्पररी राहत इनको जरूर है और इन विधायकों के ऊपर जो पैसे खर्च हुए, जो पर्क्स इन लोगों ने एंजॉय किए, उस पे हाईकोर्ट ने बिल्कुल इस बात से डिस्प्यूट नहीं किया।
वहीं दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस बात पर एतराज जताया कि आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को अपनी जीत और प्रधानमंत्री मोदी की हार बता रही है।
हमारी जीत हुई और मोदी जी की हार हुई, जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट आ रही है, हमें उस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इसलिए है कि मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मैटर था इलेक्शन कमीशन के बीच में, ये मैटर था हाईकोर्ट के बीच में, और प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया उसको, इसमें बीजेपी कहां से आ गई।
कुल मिलाकर मार्च 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने से शुरू हुआ यह मामला फिलहाल और लंबा चलेगा। हालांकि चुनाव आयोग में इन विधायकों की सुनवाई और उस पर आयोग का फैसला आने तक इन्हें फिर से विधायक का दर्जा जरूर मिल गया है। अभिजीत श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
ब्रिटेन की विवादित कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप है कि उसने 5 करोड़ लोगों के फेसबुक प्रोफाइल से डेटा इकट्ठा करके लोगों के चुनावी रुझान के बारे में जानकारी जुटाई और इस जानकारी का इस्तेमाल अमरीकी चुनाव में हुआ। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कंपनी की भारतीय चुनाव में भी कोई भूमिका थी। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
कल गुरुवार को समाचार संस्था NDTV और द प्रिंट ने अवनीश कुमार राय का एक साक्षात्कार प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व प्रमुख अलेक्जेंडर निक्स पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस को कथित तौर पर हराने के लिए काम कर रहे थे और इसके पीछे अमरीका में रहने वाला कोई व्यक्ति था। अवनीश कैम्ब्रिज एनालिटिका की भारतीय शाखा SCL इंडिया के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि साल 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कथित तौर पर उनके पास वोटर संबंधित जानकारियां लेने आई, जिसके लिए भाजपा ने उन्हें पैसे दिए। अवनीश कुमार के इस ताज़ा बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारत में क्या काम किया और क्या भारतीय चुनावों पर भी असर डालने की कोशिश की गई। इस साक्षात्कार पर भाजपा के नेशनल इन्फॉर्मेशन एंड टेक इंचार्ज अमित मालवीय का कहना था,
I don't know who is Avinash Kumar Rai. We have never dealt with him as BJP.
अमित मालवीय कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि अवनीश कुमार राय कौन है, भाजपा का उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है, मैंने उनका साक्षात्कार नहीं देखा है, हमारा कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़ी किसी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। ये थे अमित मालवीय। कांग्रेस का सोशल मीडिया देख रही दिव्या स्पंदना ने BBC को भेजे एक वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस का कैम्ब्रिज एनालिटिका से कोई संबंध नहीं रहा है और ये साक्षात्कार साबित करता है जो बात कांग्रेस हमेशा से कह रही थी। SCL इंडिया के प्रमुख अमरीश त्यागी के पिता KC त्यागी बिहार में शासन कर रही जनता दल यूनाइटेड पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बिहार में ये मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। KC त्यागी ने BBC से कहा,
ये अमरीश की कंपनी है, ये गांव के सोशल जो रिलेशनशिप है उस पे ज्यादा करती है, कितने जाट है, कितने त्यागी है, कितने बनिया है, कितने बामन है, तो ये तो यूरोप के अमेरिकन सोसाइटी में तो होता ही है। ट्रंप वाले में इंडियन जो ओरिजिन के लोग है उनके लिए क्या था, वहाँ काम किया, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि तुम उसके फेसबुक में गड़बड़ करो। अरे फेसबुक वाला गड़बड़ है, इंडिया में हुआ ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई इसके खिलाफ कोई क्राइम बैस का नहीं है।
जहाँ डेटा की हिफाजत को लेकर भारत में चिंता है, क्या भारत जैसे विशाल देश में सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी हासिल करके चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? चुनाव सर्वेक्षण करने वाली संस्था CSDS के संजय कुमार कहते हैं,
डेमोक्रेसी को इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना आजकल हम पिछले 4-5 दिनों से 7 दिनों से अखबारों में पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है खबरें बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। जो आम भारतीय मतदाता की परेशानी है, चाहे वो बिजली पानी सड़क की हो, रोजगार की हो, शिक्षा की हो, ये सब लोगों को पता है। ऐसी कौन सी ऐसी खास चीज होगी मेरे जैसे मतदाता के अंदर में, आपके जैसे मतदाता के अंदर में, जो हम अपने फेसबुक पे लिखते हैं? भारतीय पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स बड़े परिपक्व हैं, समझते हैं मतदाताओं का मन, और उसके लिए उन्होंने कहीं दूसरी जगह से डेटा लेने की शायद जरूरत नहीं है।
इस कंपनी ने भारत में राजनीतिक दलों के साथ क्या काम किया और उन दलों को किस तरह का फायदा पहुंचा, इस पर कई सवाल हैं। हमने अवनीश कुमार राय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि अब वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। इन ताजा आरोपों पर कैम्ब्रिज एनालिटिका को भेजे ईमेल का जवाब अभी नहीं मिल पाया है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
BBC इंडिया बोल।
सुप्रीम कोर्ट ने दलित आदिवासी अत्याचार निवारण कानून के तहत गिरफ्तारी और जमानत के नियमों में ढील दे दी है। यानी अब अत्याचार की शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी और जमानत भी मिलना संभव होगा। जाति विभाजित समाज में दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा कैसे करेगा कानून, इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 24 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
महेंद्र सिंह धोनी से दशकों पहले भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर हुआ करते थे फारूख मानेकशॉ इंजीनियर। फारूख न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपर थे बल्कि बहुत ही स्टाइलिश और आक्रामक बल्लेबाज भी थे। हाल ही में कोलिन इवांस ने उनकी जीवनी लिखी है फारूख द क्रिकेटिंग कैविलियर। आज की विवेचना में रेहान फजल नज़र डाल रहे हैं फारूख इंजीनियर के क्रिकेट जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
भारतीय क्रिकेट के शुरुआती ग्लैमर बॉयज का जिक्र हो तो सलीम दुर्रानी, एमएल जयसिम्हा और टाइगर पटौदी के साथ फारूक इंजीनियर का नाम शायद सबसे ऊपर लिया जाएगा। गालों पर टिम्पल, बला के बातूनी और मुंह फट, गोरे चिट्टे, फारूक इंजीनियर की गिनती अपने जमाने के सबसे डैशिंग बल्लेबाजों और विकेट कीपरों में होती थी। एक बार जब एक टेस्ट मैच के दौरान डेनिस लिली ने उन्हें ब्लैक बास्टर्ड कहकर स्लेच किया था तो इंजीनियर ने स्लिप में खड़े हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से पूछा था, इज ही कलर ब्लाइंड, या दूसरे शब्दों में क्या लिली को दृष्टि दोष है। इंजीनियर मुंबई में पैदा हुए थे और वहीं के डॉन बॉस्को स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी, जहां मशहूर अभिनेता शशि कपूर उनके क्लासमेट हुआ करते थे। एक बार उन्होंने शशि कपूर के चेहरे को घायल होने से बचाया था।
जो भी क्लास में बात करते थे उसको डस्टर, हैवी डस्टर फेंकते थे और इंजर करते थे स्टूडेंट्स को। उस टाइम में सब चलता था तो मैं और शशि गप्पे मारते थे लास्ट बेंच पे बैठ के। मैंने जस्ट देखा फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई डस्टर सीधा शशि के मुंह तरफ जाता था तो मैंने हाथ खोल के मेरा पहला फर्स्ट स्लिप कैच मैंने पकड़ लिया इंचेस फ्रॉम हिज फेस। मैं हमेशा मजाक करता शशि के साथ कि तेरे को डस्टर लगता था तो तेरा फेस डिसफिगर्ड हो जाता था और तेरे को डाकू का रोल मिल जाता था, हीरो का।
1961 में कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत करने वाले फारूक के खेल की खास बात थी उनकी दिलेरी और बड़े से बड़े फास्ट बॉलर को मारने की उनकी क्षमता।
वेस्ट हॉल दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर था क्योंकि वो इतनी पेस, वो ओवर 100 माइल्स पर आवर बॉलिंग करता था। आजकल तो बोलते हैं अरे 90 के डाला, आज उस टाइम में मेजरिंग नहीं था कुछ स्पीड का और उस टाइम में बाउंसर्स और बीमर्स का कुछ लिमिट नहीं था। जितने चाहे उतना बाउंसर डालो, बीमर डालो बैट्समैन को, और अनकवर्ड पिचेस पे खेलते थे हम लोग। बैट तो हमारा ब्रूक बॉन्ड का चाय का डब्बा से बनाए ऐसे ऐसे बैट थे हमारे जमाने में। आजकल तो इतने अच्छे बैट है कि एजेस लग के सिक्स जाते हैं। हमारे टाइम में सिक्स मारने के लिए तो बिल्कुल छोटा सा स्वीट स्पॉट था, वहीं मारना था। मैं और सलीम दुरानी लोगों बोलते थे क्राउड में से सिक्सर सिक्सर, तो हम सिक्स मारते थे। खाली सिक्स नहीं मारते थे, पर उन लोग के लैप में मारते थे। हम लोग के टाइम में पैसे नहीं थे, कुल 50 रुपये मिलते थे दिन के। एक टेस्ट मैच में मैं गावस्कर साथ बैट करता था, 4 दिन में हम मैच खत्म करते थे टेस्ट मैच। हमें सिर्फ 15-20 रन करना चाहते थे मैच खत्म के लिए और आधा घंटा के ऊपर था टाइम। हम तो आराम से वो दिन जो शाम को ही मैच खत्म करते थे, मगर ड्रेसिंग रूम से इतने मैसेज आए हम लोग के लिए कि आज मत खत्म कर दो, कल का 50 रुपये जाएंगे हमारे। इसलिए हमने ब्लॉक करने का शुरू कर दिया 50 रुपये के लिए।
विश्व पटल पर फारूक का नाम सबसे पहले 1966 में आया जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर खेलते हुए लंच से पहले 94 रन बनाए। सरदेसाई की सुस्ती की वजह से वो लंच से पहले सेंचुरी नहीं कर पाए, वरना वो विक्टर ट्रेम्पर, डॉन ब्रेडमैन और माजिद खान जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाते जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था।
मेरे ख्याल से कोई भी तैयार नहीं था ओपनिंग करने के लिए क्योंकि सब घबराते थे। पटौड़ी ने मुझे पूछा आप जाएंगे, मैं बोला जरूर, तो गए और पहला ओवर में मैं 4 चौका मारा वेस्ट हॉल को बाउंसर। उन लोग सोचते थे कि ये कहां से आया करके, कभी सब बैट्समैन डक करते थे हमारे बाउंसर को, ये साला हुक करता हम लोग को। मुझे याद है कि वेस्ट हॉल को इतना मारा पहले ओवर तो चार्ली ग्रिफिथ वो हंसता था कि साला देखो कितना मार खाता है। पीछे ग्रिफिथ बॉलिंग को नगा है तो उसको भी 20-25 रन मारे एक ओवर में। तो हेड बोलता है देखो मुझे नहीं मारते तेरे को ही मारता है। सही ओवर के बाद सोबर्स एकदम गर्म हो गया क्योंकि तुम लोग क्या करते हो आउट करने के लिए रन देते हो इतने। तो बोलते हम क्या करें वो मारता है बैट्समैन तो खुद आया बॉलिंग करने के लिए और खुद को 25 रन मारे में एक ओवर में। ऐसे करके 94 बिफोर लंच हुए।
लंच के बाद लॉन्स गिब्स की पहली गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। 1971 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व एकादश में गावस्कर और बेदी के साथ चुना गया। उस टीम में पाकिस्तान के भी दो खिलाड़ी थे इंतखाबे आलम और जहीर अब्बास।
उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान की वॉर चलती थी और जहीर अब्बास मेरा रूममेट था। हम दोनों एक एक फैमिली की खबर पूछते थे रोज और जहीर की मुस्टाश मुच्छी थी तो मैं एक टाइम प्रैक्टिस टाइम में उसकी मुच्छ के साथ खेलता था। तो कोई फोटोग्राफर ने शार्प लेंस से पिक्चर लिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट पेज पे बिल्कुल पूरा पेज मैं जहीर की मुच्छ के साथ खेलता हूँ और बोलता है इंडिया पाकिस्तान वॉर ? प्लेयर लोग कितने फ्रेंडली है मगर देश देश लड़ाई करते हैं।
भारतीय क्रिकेट में फारूक से जिंदा दिल और मजाकिया खिलाड़ी कम हुए हैं। प्रैक्टिकल जोक्स खेलना उनकी आदत में शुमार था। उनके बाद भारतीय टीम में विकेट कीपर बने सैयद किरमानी याद करते हैं।
फील्ड पे भी वो काफी एंजॉयमेंट करते थे और जोक्स सुनाते थे इन बिटवीन दी ओवर्स या इंटरवल में। 71 जब ये मैं उनका रूममेट रहा, कर्नल हेमो अधिकारी हमारे मैनेजर थे उस टाइम पे और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई एक जूनियर एक सीनियर रूम शेयर करना है। फारूक इंजीनियर तो वहीं पे रहते थे, इंग्लैंड के ही मुकीम थे। तो इन्होंने कहा कि पार्टनर देखो कर्नल साहब आएंगे 10:30 नॉक करेंगे, तुम लाइट ऑफ कर दो और थोड़ा सा खोलना, जबकि ये सिर्फ झांके। और इन्होंने अपना बेड जबरदस्त कोई सो रहा है वैसा बना दिए। तो बहरहाल बराबर 10:30 कर्नल साहब आए और खटखटाए। मैनेजर साहब सिर्फ झांके और कहा कि हाँ हाँ फारूक सो रहा है ना। उन्होंने समझा कि भाई फारूक इंजीनियर साहब सो रहा है, मैं तो कमरे में ही रहा और 4:00 ये आए।
विकेट के पीछे खड़े होकर स्लिप के फील्डरों और बल्लेबाजों से लगातार बात करना फारूक इंजीनियर की खास अदा हुआ करती थी। सुनील गावस्कर लिखते हैं,
फारूक भारतीय क्रिकेट के असली प्लेबॉय थे। उनकी वजह से ही मैं स्लिप फील्डर बना। कप्तान अजीत वाडेकर स्लिप के गजब के फील्डर हुआ करते थे, लेकिन कुछ ओवरों के बाद या तो वो कवर पर खड़े हो जाते थे या शॉर्ट मिड विकेट पर। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि बगल में खड़े फारूक इंजीनियर के मुंह से हर मिनट निकलने वाले चुटकुलों की वजह से उनका ध्यान बॉलिंग चेंज और फील्ड प्लेसमेंट से हट जाया करता था, इसलिए वो स्लिप से हट जाते थे और मुझे उनकी जगह फील्डिंग करनी पड़ती थी। फारूक और मैं एक दूसरे को डिकरा कह के बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है बेटा, हालांकि वो मुझसे उम्र में कई साल बड़े हैं।
1967 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान जब इंग्लैंड की महारानी उनसे हाथ मिला रही थी, तभी उन्होंने मुंबई में उनकी बेटी पैदा होने का शुभ समाचार उन्हें सुनाया था।
मेरी अम्मा बहुत बीमार थी, वो बेचारी मर गई एट अ यंग एज। तो मैं उसके बेड साइड पे था, रोता था रात को, तो उसने हाथ रखा मेरे सिर पे और बोला बेटा मत रो, मैं जरूर आऊंगा तेरी पहली डॉटर होके। मुझे मालूम था कि माय फर्स्ट चाइल्ड वुड बी अ डॉटर, मेरी अम्मा आने वाली है मेरे ऊपर पे। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में हमें थे, रानी थी क्वीन और टेलीग्राम आया इंडिया से कि माय वाइफ इज डिलीवर्ड। क्वीन आए मेरे पास, मिस्टर इंजीनियर आई हैव गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू। तो मुझे मालूम था कि मेरी वाइफ एक्सपेक्ट करती थी, तो मैं बोला लड़का है कि लड़की? तो मुझे बोला तेरे को क्या चाहिए, मुझे पूछा, मैं बोला लड़की चाहिए मुझे। तो बोला हाँ लड़की आई तेरे को, और लड़की नाम भी मिनाज मैंने दिया, मुझे मेरा अम्मा का नाम था।
1971 में ओवल के मैदान पर जब भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की जमीन पर पहली बार हराया था, तो आबिद अली और फारूक इंजीनियर क्रीज पर थे।
आबिद अली के पास बाद में बिशन बेदी और चंद्रशेखर थे, उन लोग को तो बैट कौन सा लाइन से पकड़ना भी मालूम नहीं था। और हम लोग गेम जीतते थे, अति विश्वनाथ आउट हो गया था मुझे लगता है, और अभी दल आया। तो मैं बोला अभी 5-6 रन सिर्फ चाहिए हम लोग को, कुछ पागलपरा मत करना। तो बोला हाँ 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 हाँ। तो पहला ही बॉल चार्ज्ड हुआ क्रीज पे, एलन नॉट ने स्टंपिंग मिस किया। एंड ऑफ द ओवर हम लोग को और 2-3 रन चाहते थे, तो मैं बैटिंग करता था। तो पहला बॉल मैं सिंगल लिया, तो अभी को बोला कुछ पागलपरा मत कर। बोला हाँ 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 हाँ। इतना नर्वस था बेचारा, तो क्या हो क्या क्रीज के बाहर छक्का माने हो गया, लकीली टॉप एज लग गई उसकी और स्लिप के ऊपर जाके 4 रन मिल गए उसको और हम जीत गए।
And he's cut that away, and that's going to be it. It's going through for the boundary. Nobody bothering to chase it. Abid Ali cutting Luckhurst away for four and giving India victory here in the Oval Test match.
1973 में जब मुंबई के ब्रेबर्न स्टेडियम में फारूक इंजीनियर ने शतक बनाया था तो पवेलियन में मौजूद मशहूर उद्योगपति जेआरडी टाटा ने उन्हें गले लगा लिया था।
मैंने सेंचुरी की और मैं अंदर आता था तभी जेआरडी टाटा ने सफेद सफारी सूट पहना था, गवर्नर्स पवेलियन में था। वो नीचे आए सबके सामने, 100,000 पीपल थे, उसके सामने आके मुझे बहुत बड़ा हक किया उसने। मैं बोला मिस्टर टाटा मैं पसीना करता हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। आए ड्रेसिंग रूम में तो सब लड़के वेल प्लेड तो मुझे बहुत प्यास लगी थी तो जेआरडी टाटा पानी का ग्लास लेके आया। मैं बोला थैंक यू सो मच सर। पीछे बैठे थे हम बेंच पे, मैं फील किया किसी मेरा पैड का बकल निकालता है करके, वो जेआरडी टाटा था। मैं सर क्या करते हो बॉस? मिस्टर टाटा अच्छा कुछ नहीं, मैं तेरे को रहने दूंगा, लंच बॉम्बे हाउस में हमारे साथ, मैच खत्म होगा बाद में जरूर आऊंगा।
फारूक इंजीनियर गजब के किस्सेबाज है। वो 1974 के इंग्लैंड दौरे का एक किस्सा सुनाते हैं जब इंग्लैंड की महारानी ने भारतीय टीम को बकिंगहम पैलेस में चाय पर बुलाया था।
हमारा मैनेजर अधिकारी था और बकिंगहम पैलेस पर क्वीन के इंतजार करते थे हम लोग अपना एक रूम में थे, वहाँ ड्रिंक्स था और स्नैक्स था। पर हेमू अधिकारी को पीनट का बहुत शौक था तो एक मुट्ठा नहीं दोनों हाथ से मुट्ठा मारते थे और फेंकते थे मुंह में, दरवाजा खोलने की हम लोग राह देखते थे। तभी उन कर्नल ने दोनों हाथ मुट्ठा मारे पीनट में और दरवाजा खुला और इट वॉज अनाउंस्ड हर मैजेस्टी द क्वीन। तो पहले तो मैनेजर को ही मिले ना तो हेलो कर्नल, क्वीन ने हाथ दिया तो कर्नल का तो वांदा पीनट था दोनों हाथ में है ना, तो अपने नमस्ते किया उसने तो नमस्ते करते करते इतनी पीनट गिर गए लाल कारपेट पे क्वीन के जूते में और ड्यूक ने बोला कर्नल यू लाइक योर पीनट्स डोंट यू, तो कर्नल का तो मुंह एकदम फुल था पीनट्स करके।
1983 में जब भारत ने विश्व कप जीता तो फारूक इंजीनियर ब्रायन जॉनस्टन के साथ कमेंट्री कर रहे थे। जब भारत जीत के कगार पर था तो जॉनस्टन ने अचानक फारूक से मजाक में पूछा कि अगर भारत विश्व कप जीतता है तो क्या इंदिरा गांधी अगले दिन भारत में छुट्टी घोषित कर देंगी। फारूक का जवाब था बिल्कुल, इंदिरा गांधी क्रिकेट की शौकीन हैं, अगर वो इस समय कमेंट्री सुन रही हों तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भारत की जीत पर पूरे भारत में छुट्टी घोषित की जाए। आधे घंटे बाद कमेंटेटर बॉक्स का फोन बजा, दूसरी तरफ भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इंजीनियर से कहा मैंने आपकी सलाह मान ली है, कल पूरे भारत में छुट्टी है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा ज़रूर। आज ही के दिन साल 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश राज में फांसी दी गई थी और आज ही के दिन 1988 में पंजाब के इनकलाबी कवि अवतार सिंह संधु उर्फ पाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुनवा रहे हैं पाश की कविता 23 मार्च का एक अंश राजेश जोशी की आवाज़ में।
उसके चले जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद अपने भीतर खुलती खिड़की में लोगों की आवाजें जम गईं। उसकी शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे से आंसू नहीं, नाक पोंछी, गला साफ कर बोलने की, बोलते ही जाने की मशक की। उससे संबंधित अपनी उस शहादत के बाद लोगों के घरों में, उनके तकियों में छिपे हुए कपड़े की महक की तरह बिखर गया। शहीद होने की घड़ी में वो अकेला था ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह वो निस्तेज न था।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान एक बसपा विधायक अनिल सिंह ने क्रॉस वोटिंग की। फ्रांस में दक्षिण पश्चिम में सुपरमार्केट में बंधक बनाने वाले एक बंदूकधारी को पुलिस ने मार गिराया है। ट्रेप के सुपरमार्केट को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था जहां कथित तौर पर बंदूकधारी ने दो लोगों की हत्या की है। उसका कहना था कि उसने एक कार का अपहरण करने के दौरान एक और शख्स की हत्या की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जॉन बोल्टन को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसराइली सरकार के कई सदस्यों ने इस फैसले का स्वागत किया है। BBC समाचार।
दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम को शॉर्टवेव पर शाकिर आलम और फेसबुक पर भूमिका राय ने आप तक पहुंचाया, तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।